ओम शांति। दीदी ने विधि से सिद्धि हम सबके सम्मुख रखा और बहुत गहराई से हम सबको स्पष्ट किया। दीदी वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, सबके प्रश्न आए हुए हैं। योग की प्रॉपर विधि क्या है दीदी? विधि बहुत सारी बताई जाती है, ऐसे योग करो, ऐसे योग करो, ऐसे योग करो, तो योग की प्रॉपर विधि क्या है जिससे हमें सिद्धि मिले?
योग की विधि भिन्न भिन्न है। क्या है? मेनली आत्मिक स्वरूप में रहना है और बाबा को याद करना। शुरू में हम क्या करते हैं? ज्ञान का मनन मंथन करते हैं। नए हैं, ज्ञान का मंथन करते हैं, बाबा ज्ञान सागर है, प्यार का सागर है, आदि आदि, जैसे कि मन में रिवाइज करते हैं। फिर बाद में बाबा से चिट-चैट करते हैं, समझते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, प्यार के सागर हो, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो, ऐसे बाबा से बातचीत करते हैं। और धीरे धीरे फिर फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में जाते हैं। फरिश्ता बनकर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी का चक्कर लगाते हैं और फाइनली बिंदी बन बिंदु में लीन हो जाते हैं। यह हमारी बीज रूप स्थिति है। अभी क्या है, हर एक की अपनी अपनी स्टेज है। कोई नए है, कोई पुराने हैं, कोई नियमों पर पूरा चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। और कई पूछते हैं हम बाबा को कहाँ याद करें? जहां भी आप चाहो, आप अपने आप को बाबा के कमरे में, भल आप मधुबन में ना हो पर मधुबन में आए हैं, बाबा का कमरा देखा है, तो आप अपने आप को बाबा के सामने बैठकर याद कर सकते हैं। मतलब बाबा को यहां बुलाओ या आप बाबा के पास जाओ सूक्ष्म वतन में या परम धाम में। और कई पूछते हैं हम ब्रह्मा को याद करें, दादी गुजार को याद करें, निराकार को याद करें, जो भी आपको ठीक लगे। क्योंकि जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को साकार में देखा है तो उन्हों के लिए गुलजार दादी के तन में बाबा आते हैं, वो सीन बुद्धि में लाना सहज है। कईयों को जिन्होंने साकार मिल को मिले हैं तो बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को याद करते हैं, और कोई है निराकार को पसंद करते हैं तो निराकार को भी याद कर सकते हैं। बाबा कहते जो करते हो अच्छा है, जो करते हैं ठीक है। तो इसलिए अनेक प्रकार की याद करने की विधि है। और कल भी बाबा ने बताया ना, वैरायटी रखो बुद्धि में, लाइट हाउस कभी बनो, कभी माइट हाउस बनो, कभी फरिश्ता बनो, कभी बिंदु बनो, कभी बाबा से प्यार खींचो। तो लक्ष्य लेकर बैठो तो उससे क्या होगा कि आपको बाबा से विविध शक्तियां मिलेंगी। और लक्ष्य रख के वैरायटी संबंध का भी अनुभव करो, क्योंकि योग का लक्ष्य है अनुभव करना, शक्ति प्राप्त करना, अपने को आगे बढ़ाना। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी अवस्था एक रस अचोल अडोल लाइट प्रेम स्वरूप शांत स्वरूप बनती जाती है, तो आप जान सकते हो कि हमारा योग ठीक है। यदि आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, संस्कारों में परिवर्तन नहीं होता है, तो समझो कुछ योग में गड़बड़ है
जी। मतलब विविध प्रकार से हम योग का अभ्यास कर सकते हैं, किसी एक ही प्रकार से योग करने की आवश्यकता नहीं है। दीदी एक प्रश्न ये भी कि हम याद निरंतर कैसे करें, क्योंकि बाबा हमेशा निरंतर याद की बात कहते हैं, 8 घंटे याद की बात कहते हैं, और योग होता ये है कि थोड़ा समय याद रहता है फिर भूल जाता है। क्या ऐसी युक्ति अपनाएं जो बाबा की याद हमारी निरंतर हो?
अटेंशन चेकिंग, ये बहुत जरूरी है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जितना अपने मन पर अटेंशन रखेंगे कि मन इधर उधर नहीं भटकता है, क्योंकि ज्ञान के पहले तो हमने मन को फ्रीडम दे दिया है, जो सोचना है सोचो, जो बोलना है सो बोलो। अभी हमको देखना है, हमको व्यर्थ संकल्प नहीं है, नेगेटिव नहीं है और अपवित्र संकल्प नहीं है। और ग्रस्त व्यवहार में रहना है, कर्म भी करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, तो नेचुरली हमें कर्मयोगी बन के रहना है, ये अभ्यास करना है कि कर्म करते करते बाबा की याद रहे। मिसाल के तौर पर कई बार क्या है, खाना पकाते हैं ना, तो माता क्या करेंगी, हाँ मेरे बच्चे को ये अच्छा लगता है, उस बच्चे को ऐसा अच्छा लगता है, मेरे पति को ये अच्छा लगता है, उन्हों को याद करती है। ये ना हो, मैं ब्रह्मा भोजन शिव बाबा के लिए बना रही हूं, ये बुद्धि में रहे, तो खाना ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। देखो मधुबन में आते हैं, सिंपल भोजन होता है, परंतु बाबा की याद में पकाया हुआ है तो सभी खुशी से खाते हैं। विदेशी जो वेजिटेरियन को नई आदती, वो भी बहुत प्यार से मधुबन का भोजन खाते हैं और भोजन बनाना सीख भी जाते हैं। जब शुरू शुरू में आते थे ना, तो टोली किचन में चले जाते थे और सब टोलियां बनाना सीख गए। पहली बार जब दादी आई थी ऑस्ट्रेलिया में, तो दादी के लिए ब्रह्मा भोजन बनाया था, चावल बॉइल्ड साबुत मूंग और सलाद, ये ब्रह्मा भोजन था उनका। और एक दो साल में जलेबी गुलाब जामुन सब बनाना सीख गए और सफाई भी इतनी रखते थे। तो जो सेंटर पर आने वाली माताएं कहती थी, ये भाई लोग इतना अच्छा सफाई रखते हैं। तो क्या है कि लक्ष्य रखने से कि बाबा हमारे से क्या चाहता है, कितनी सफाई भी हो, याद में खाना पकाया हो, याद में खाना खाना है और याद में सब कुछ करना है। ड्राइविंग भी करो ना तो याद दिलाओ के मैं ड्राइवर यहां बैठा हूं, ये शरीर द्वारा कार चला रहा हूं। और रेड लाइट आते हैं तो शिव बाबा को याद करना। दुनिया वाले क्या है, रेड लाइट होती है तो इतने परेशान हो जाते हैं, जल्दी रेड लाइट पूरी होए और हम भागे। और बाबा के बच्चे रेड लाइट है तो चलो बाबा को याद करें। तो क्या है कि गार्डनिंग करते हो तो बाबा भी गार्डनर है, माली है ना, तो कैसे बाबा भी हम कांटों को फूल बनाते हैं, याद करो। और बाबा हमारे से किचरा निकालते हैं, जैसे गार्डनर होता है ना, घास या फालतू वीड्स हिंदी में क्या कहते हैं,
खरपतवार,
हाँ वो निकाल देते हैं ना, तो बाबा हमारे से पुराने संस्कार निकाल देते हैं। तो जैसे जो काम करते हैं ना उसको बाबा के कार्य से भेंट करो तो क्या होगा कि काम भी करते रहेंगे, बाबा को याद भी करते रहेंगे।
जी, तो लक्ष्य रखें, अभ्यास और अटेंशन। और दीदी ने बहुत सुंदर बातें, खाना बनाएं, गार्डनिंग करें, गाड़ी चलाएं, क्या क्या करना है, बाकी का होमवर्क आपका कि अलग अलग कर्मों में हम कैसे बाबा को साथ रखें। दीदी पहले दिन ही बात हुई कि आप ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, तो बाबा ने आपको ट्रिब्यूनल में बैठाने की बात कही है, तो ट्रिब्यूनल का स्वरूप कैसा होगा ये प्रश्न है। और दीदी आप हमें याद रखेंगे, दीदी जब ट्रिब्यूनल बैठेगी उसका स्वरूप कैसा होगा, एंड में होगा, हमारे शरीर छोड़ने के बाद होगा या कैसा होगा। और दूसरा आगे है कि दीदी आप ट्रिब्यूनल में जब बैठेंगे तो हम लोगों को याद रखेंगे या नहीं
ट्रिब्यूनल में,
हाँ।
हम क्यों याद करेंगे। बाबा कहते हैं खुश रहो आबाद रहो न विसरो न याद करो। हाँ, तो क्या है कि जब बाबा ट्रिब्यूनल में बिठाएगा तो वो हमको आप सबके सामने नहीं बिठाएगा, आपके सामने आपके सेंटर इंचार्ज या जोन इंचार्ज को बिठाएगा, हमारे सामने एशिया वाले बैठेंगे।
दीदी हम भी एशिया में हैं।
हाँ, इंडिया के नहीं, मधुबन वालों के सामने हो सकता है, मधुबन वालों के सामने हमको बिठाएंगे। क्योंकि क्या है कि ट्रिब्यूनल में बाबा ने हमारे द्वारा जिन जिन को शिक्षा दी थी और वो शिक्षा जिन्होंने नहीं पालन की तो बाबा क्या करेंगे, दिखाएंगे ये शिक्षा तुमको दी गई थी तुमने नहीं पालन की, ये सजा। तो जिन्होंने जिसको शिक्षा दी है वो सामने आएगा
और उस प्रकार की सजा फिर मिलेगी। तो कोई सजा खाने वाले तो नहीं है ना, है ना, हम सब बिल्कुल हाथ उठाए जरा, हम बिल्कुल टाटा करते हुए दीदी से बहुत अच्छे से दृष्टि लेते हुए जाएंगे, राइट? दीदी, समय के ऊपर प्रश्न आया है कि क्या टू लेट का बोर्ड लग गया है, और नहीं तो कब लगेगा? बाबा हमेशा कहते हैं समाप्ति होनी है, होनी है, ये विनाश का समय कौन सा है? फाइनल
विनाश का समय कब होगा
जी? फाइनल बाबा कहते हैं कि बार बार विनाश होगा होगा, तो विनाश की डेट क्या होगी, और साथ ही क्या टू लेट का बोर्ड लग गया है या लगने वाला है?
भगवान ने अभी तक डेट नहीं दी है, फाइनल डेट नहीं दी है। बाबा कहते हैं आप एवर रेडी रहो, कभी भी इंडिविजुअल का मौत कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंट होता है, रास्ते चलते चलते एक्सीडेंट हो जाता है, आपका दोष नहीं है, फिर भी गड़बड़ हो जाती है। क्या है आजकल इंडिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं
जी।
लोग उल्टे सीधे रास्ते चलते हैं, और एक ड्राइवर के भूल के कारण एक ट्रक है वो सामने से आता है उल्टे रास्ते, गाड़ी को उड़ा दिया, 7 जने मर गए। मैं 60s की बात करती हूँ। एक कुमार था, सेंटर से उतरकर सामने बस स्टॉप पर खड़ा था, और बस आई, धक्का दिया, ऑन द स्पॉट मर गया। तो एक्सीडेंट हो सकता है, अभी कोविड में देखो कितने लोग मर गए, कैंसर। हम पढ़ते थे मेडिसिन, तब कहते थे 40 वर्ष की उम्र के बाद यदि आपके शरीर में कोई गांठ है ना, तो पहले समझो कैंसर है, पीछे उसकी जांच करके फाइनल हो सकता है कि कैंसर है या नहीं। और आजकल तो 6-8 साल 10 साल के बच्चों को कैंसर
जी,
जन्मते भी कईयों को कैंसर होता है जी। तो कब बीमारी आएंगी, कब एक्सीडेंट होगा कह नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो। बाबा ने फाइनल पेपर बता दिया है, ये फाइनल पेपर होगा नष्टो महास्मृति लब्धा, कि उस समय आप एक बाप की याद में है या किसी को याद करते हो, पर कब होगा नहीं बताया। मैं समझती हूँ आज से 20 साल से बाबा कहते हैं, नहीं 69 पहले बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा,
विनाश सामने जी।
और 1936 में कहा था एक साल बाकी,
दिवाली नहीं आएगी अगली,
अगली दिवाली नहीं आएंगी। तो इसलिए बाबा तो हमें एवर रेडी रहने का कहते हैं, बाकी कब होगा वो तो बाबा जाने और ड्रामा जाने।
जी जी, वैसे भी हम सब के लिए स्लोगन बाबा ने दिया है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, मम्मा की भी यही सीख है। इसलिए दीदी ने जैसे कहा एवर रेडी रहें, तैयार रहें, जब बाबा इशारा करें चलने को रेडी। दीदी ये प्रश्न मेरी तरफ से है, आज कल दादी का, कल या परसों दादी गुलजार जी के निमित्त भोग लगा, तो बाबा ने कहा कि अभी लौकिक और ब्राह्मण बच्चे सभी एक खिलौने में बहुत बिजी हो गए हैं, मोबाइल, इसी में बहुत टाइम लगाते हैं, इसमें बिजी हो गए हैं। तो दीदी आप क्या कहेंगे, कितना वक्त और किस रूप में हम मोबाइल को यूज करें, क्योंकि ज्यादातर सभी की दिनचर्या उसमें बहुत ज्यादा लगी है। बाबा का भी ये मैसेज था।
देखो, जो जरूरी काम है वो तो करना पड़ता है
जी।
जैसे हम हैं तो हमारे पास कितने ईमेल आते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। और साकार बाबा कहते हैं दुनियावी न्यूज में 10 मिनट दो, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जानना पड़ता है, चाहे मोबाइल से, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे टीवी से। 10-15 मिनट उसमें दो। कल ही हमारे पास एक भाई आया, कहता है मैं 2 घंटा ज्ञान की लेन देन करता हूँ व्हाट्सएप पर। मैंने कहा ये तो टू मच, 1 घंटा। 1 घंटा भले सेवा करो, परंतु ये भी देखो जिसकी सेवा करते हैं वो लाभ उठाते हैं या नहीं
जी।
क्योंकि कई बार हम चाहते हैं सबको भेजे संदेश। मेरे पास व्हाट्सएप पर रोज कितनों का थॉट फॉर टुडे जैसा कुछ न कुछ संदेश आता है, मैं तो खोलती नहीं। ज्ञान तो है ये नया, क्या ब्राह्मण हमको देंगे। न मैं खोलती हूँ, न जवाब देती हूँ, न पास ऑन करती हूँ। परंतु जरूरी कारोबार है, जैसे गृहस्थी है जरूरी कारोबार तो होता है, या सेंटर वाले भी जरूरी कारोबार होता है, जरूर
करें। जी जी, मतलब हम देख लें कि उसका मिसयूज ना हो, जिसके कारण माया उत्पन्न हो, माया का प्रवेश हो। केवल सेवा और स्व उन्नति अर्थ, जैसे दीदी ने कहा, आवश्यकता अनुसार। दीदी, वर्तमान समय के अनुसार तीव्र पुरुषार्थ क्या करें जो लास्ट सोफा सोफस्ट चले जाएं? कई ऐसे बाबा के बच्चे आए हैं दीदी जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से ही ज्ञान में है, तो उनका प्रश्न है लास्ट सोफा सोफस्ट कैसे जाए, क्या पुरुषार्थ करें?
मेन बात है आजकल बाबा एक तो कहते हैं देही अभिमान, देह अभिमान का अंश मात्र न हो, और देह अभिमान के लक्षण भी जानने चाहिए। शरीर को सजावट करना, बालों की सजावट करना, हेयर ड्रेसर के पास जाना, ब्यूटी सैलून में जाना, फिर नए नए कपड़े खरीदना, और बोल चाल एक्टिंग ऐसी करें जो और सामने वाले आकर्षित हो जाए, स्पेशली यंग लोग जिनको ऑपोजिट सेक्स को आकर्षित करना है तो वो जरा एक्टर्स को फॉलो करते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए लक्ष्मी नारायण को फॉलो करना, परंतु दुनिया में फॉलो कौन को किसको करते हैं? एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को, फुटबॉलर को, जो जिसका जिसका भगत होगा या फॉलोअर होगा उसको फॉलो करते हैं। तो ये देखना है देह अभिमान ना हो, अपनी लाइफस्टाइल सिंपल हो और ना आकर्षित होना है ना किसी को आकर्षित करना है। टोटल वैराग्य हो, जब बुद्धि में है कि कल बाबा हमको क्या देने वाले हैं, सत्युग क्या होंगे, वहां हमारे दरवाजे पर विमान होगा। तो आजकल की मोटर गाड़ी, मोटर बाइक, साइकिल क्या है, क्योंकि लोगों का, ब्राह्मणों का आकर्षण उसमें रहता है। टेलीविजन उसका आकर्षण रहता है, बड़ा स्क्रीन हो, कलर टेलीविजन हो, तो आकर्षण कोई भी बात का ना हो, चलो जरूरी चीज है भले अपने पास रखे, पर मुझे चाहिए, ये अच्छा है, मेरी इच्छा है, चाहे खाना पीना घूमना फिरना कपड़े गहने ये ना हो, मतलब विकार का अंश मात्र भी ना हो। सूक्ष्म विकार है ना ये, कामना, लोभ, इच्छा, क्योंकि काम विकार छोड़ दिया, परंतु खाने में थोड़ा आकर्षण हो जाता है कि बहुत दिनों से खाया नहीं है, पानी पूरी चाहिए, भेलपूरी चाहिए, इडली सांभर चाहिए।
वो तो आज खाया देते।
तो ये इच्छा ना, चलो हाँ बनाओ खिलाओ। हमारा भंडारे वाला तो बहुत शौकीन है खिलाने का।
दीदी इतने दिनों में आते हैं तो आप ही कहते हैं सबको अच्छे से भरपूर करो, खाएं पिए, लेकिन आसक्ति ना हो सूक्ष्म अंश। दीदी आपने तो सूक्ष्म अंश की बात कही, लेकिन अगला प्रश्न ये आ रहा है कि ज्ञान में चलते चलते अगर किसी देहधारी बहन या भाई से खास प्यार हो या लगाव हो जाए तो बाबा की याद की बजाय वही याद आते रहते हैं, ऐसे में कैसे भुलाएं। दीदी एक लंबी यात्रा है तो साथ साथ सेवा करते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो कई बार किसी भाई का किसी बहन से, किसी बहन का किसी भाई से ऐसे यदि लगाव हो जाए तो वही याद आते हैं, ये ना हो कैसे इससे मुक्त हो।
मेन बात ये है बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, तो बाबा से प्यार होगा औरों से न्यारा हो जाएंगे, नहीं तो किसी न किसी से लगाव होगा। क्या है कि बचपन से लगाव की आदत है, माँ बाप से लगाव, फ्रेंड से लगाव, फिर ज्ञान में आने के बाद लौकिक से लगाव टूटकर अलौकिक से लगाव लग जाता है। तो ये देखना है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सर्व संबंध का सुख और सपोर्ट बाबा से लो, तो दुनियावी संबंधियों के साथ काम करते भी न्यारे और प्यारे रहकर करो। इसी के साथ ही मैं काम करूं ये नहीं, या ये ही मेरा अच्छा साथी है ये नहीं, मेरा पन्ना हूं। तो क्या है के न लगाव रहेगा, न फैमिलियारिटी रहेंगी, न नाम रूप अप क्या रहेगा, एक बाबा की याद। साथ में काम करना होता है करो, परंतु ये नहीं कि यही के साथ करो।
दीदी मान लीजिए किसी का मेरा नहीं है लेकिन किसी का मेरे से ऐसा लगाव है, एक अटैचमेंट है, रहना भी उनके साथ है, सेवा भी उनके साथ करनी है, और वो व्यक्ति हमें पता है कि ये मेरे साथ अटैच्ड है, तो ऐसे में हम क्या करें।
वन साइडेड अटैचमेंट नहीं हो सकती, यदि मेरा उनसे लगाव नहीं है, उनका मेरे से लगाव नहीं हो सकता। इसलिए मुझे ध्यान रखना है, एज अ टीचर, एज अ निमित्त, कि मैं एक बाबा का सहारा लूं और औरों को सहयोग दूं, उनको आधारित ना बना,
निराधार बनाए। जी दीदी, आपने एक
बीच में बाबा को रखूं।
जी,
चाहे कोर्स भी कराते हैं ना, बीच में बाबा के रखो, बाबा का ज्ञान है, मेरा स्टूडेंट नहीं, बाबा का बच्चा है।
जी जी दीदी, आपने शुरू से अब तक हमारा ध्यान संबंधों के ऊपर खिंचवाया, अलग अलग बाबा के साथ संबंधों का अनुभव करो, नहीं तो फिर और संबंध ही खींचेंगे। तो ये संबंधों का अनुभव किस रूप में करें दीदी? सूक्ष्मतन में करें, यहाँ करें, बिंदु बाबा के साथ करें? और भाइयों का एक प्रश्न रहता है कि बाबा के साथ हम साजन का अनुभव करें या सजनी का, और सजनी बने तो कैसे बने?
आपको क्या करना पड़े, रोज एक संबंध लो, अमृत वेले डिसाइड करो कि आज सारा दिन मुझे बाबा को बाप के रूप में याद करना है। तो सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, फिर चलते फिरते जैसे आप बच्चा हो और बाबा बाप है, बाप की अंगुली पकड़ कर चलो, बच्चे की तरह व्यवहार करो, सारा दिन चलते फिरते। रात को बाबा को गुड नाइट फादर करके सो। कभी मित्र के संबंध में तो जैसे फ्रेंड्स होते हैं, एक दो के साथ घूमते चलते फिरते शेयर करते हैं अपनी सफलता की स्टोरी या अपने प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स के रूप में शेयर करते हैं, ऐसे बाबा से शेयर करो
दीदी।
तो सारा दिन
दीदी विजन क्या हो, बाबा कैसे मेरे साथ हैं, बिंदु बाबा मेरे साथ हैं, ब्रह्मा बाबा मेरे साथ,
बिंदु कैसे होगा
वही विजन, तो ब्रह्मा बाबा मेरे साथ,
बाप
साथ
दादा,
बाप दादा साथ,
बाप दादा, क्योंकि बिंदु को कैसे हम बातचीत कर सकते हैं, तो उस समय बाप दादा दोनों साथ में रखो। तो भाइयों को भी अपने को सजनी समझना है, ये बड़ी बात है, क्योंकि भगवान साजन है सबका, भगवान सजनी नहीं है। बहनों के लिए तो बहुत सहज है, भाइयों को अपना पुरुषत्व छोड़ के अपने को सजनी बनाना, ये एक बड़ी कला है। जैसे देखो जसोदा मैया, उसने कितना त्याग किया ना, पति को बाबा कहना कितना बड़ा त्याग है। तो इसलिए भाइयों को भी अपने को सजनी करके साजन को याद करें।
एक भाई कह रहे थे दीदी कि मैं सूक्ष्मतन में जाता हूं और वहां फिर जाके साड़ी पहन लेता हूं, तो ऐसा करने की तो
कर सकता है, पर सारा दिन साड़ी पहन के चलता है, सिर्फ सूक्ष्मतन में जाकर नहीं, सारा दिन साड़ी पहन के चल रहा है,
तब तो इनको सीखना पड़ेगा। खैर ये सूक्ष्म और रमणीक बातें हैं, आप सब समझते हैं, दीदी का भाव और ज्ञान का भाव, ये ज्ञान बहुत रमणीक है, तो हमें रमणीकता से बाबा को याद करना है। दीदी बाबा हमेशा कहते हैं काम महाशत्रु है और आदि मध्य अंत दुख देता है, तो ये आदि मध्य अंत दुख देने का भाव क्या है?
देखो काम महाशत्रु, पहले तो देवान आता है, फिर अटैचमेंट होता है, मोह हो जाता है ना, जिसके साथ संबंध है उसमें मोह पड़ जाता है, फिर बच्चा होता है तो बच्चे में भी मोह पड़ जाता है। तो समझो क्या होता है कि कोई भी बीमार हुआ पति या बच्चा, दुख होता है, मर गया तो बात ही मत पूछो, इतना दुख होता है जो बात मत पूछो। और समझो कईयों को, जैसे मुसलमान में और अफ्रीका में एक रिवाज होता है कि लड़की को छोटेपन में ही उसको वो करते हैं, उसको काट देते हैं, तो उन्हों को इवन जब संबंध करते हैं बहुत पीड़ा होती है। तो समझो कईयों को ड्यूरिंग पीड़ा होती है, कईयों को इच्छा नहीं है उसके विरुद्ध करते हैं, तो एक पार्टी को तो बहुत दुख होता है क्योंकि आजकल तो न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है कि शादी में भी यदि किसकी इच्छा नहीं है, इसका विरुद्ध, इसका इच्छा के विरुद्ध उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसको रेप कहते हैं
जी।
और वो भी होता रहता है क्योंकि कईयों को उसका शौक नहीं होता है। विशेष हमने देखा है माताओं को इतना नहीं है, भाइयों को थोड़ा ज्यादा विकार का फोर्स होता है, तो इसलिए दूसरे को दुख देते हैं तो क्या हुआ, पाप कर्म हुआ ना।
तो इस प्रकार से आदि मध्य अंत दुखी है हर प्रकार से जी। लास्ट प्रश्न ले रहा हूं दीदी, कई बार हर रोज सेम ज्ञान योग करते करते बोर हो जाते हैं, जिससे ना तो योग लगता है ना मुरली अच्छी लगती है, इससे जीवन में खालीपन आ जाता है, अकेलापन लगता है, ना ब्राह्मण जीवन अच्छा लगता है ना ज्ञान, इसे कैसे ठीक करें।
अपने में नवीनता लान, जब ज्ञान सुनो ना तो ज्ञान का मनन मंथन करते रहो, तो वो ज्ञान रत्न आपके बन जाएंगे। नहीं तो समझते बाबा ज्ञान देते हैं, पर मेरा ज्ञान उसमें क्या होगा, मेरेपन में खुशी होंगी। योग में भी वैरायटी करवा, कल भी बाबा ने कहा ना, वैरायटी अनुभव करने से क्या होगा, रमणीकता आएंगे। रिपीटेडली उसी रूम में, उसी कमरे में, उसी लाइट में, उसी म्यूजिक में करेंगे
बोर होंगे,
तो बोर हो जाएंगे। तो ज्ञान में नवीनता लाओ, योग में नवीनता लाओ, सेवा में नवीनता लाओ, एक ही ढंग से कोर्स नहीं कराओ, थोड़ा कुछ विचार सागर मंथन करके नए नए ढंग से कोर्स कराओ, तो आप देखेंगे नवीनता लाने से आपको रमणीकता आएंगी, एंजॉय करेंगे
जी।
अभी हमारे पास कल ही समाचार आए क्योंकि श्रीलंका वालों को लॉकडाउन हो गया। उन्होंने 21 दिन की भट्टी रखी जूम पर और हर एक टाइम अलग अलग लोगों को कहा, अच्छा आप हैं स्लाइड शो तैयार करना, कमेंट्री तैयार करना, और उनको इतना अच्छा अनुभव हुआ कि जिनों को हिम्मत नहीं थी योग कराने की वो भी योग कराया और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो कुछ नवीनता लाओ, हिम्मत रखो।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और वैसे इसीलिए आज शाम को भी विशेष योग है, नवीन प्रकार से योग है, क्योंकि बाबा लगातार नवीनता, दीदी ने भी नवीनता की बात कही, हम भी यहाँ से सीख के जाए, हमें अपने ज्ञान योग धारणा सेवा सब में सुंदर नवीनता लाते हुए आगे बढ़ना है। तो दीदी ने इतने प्यार से हम सबकी क्लास कराई, हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए, हम क्या करेंगे, एक हाथ की ताली से दीदी का दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। चलिए प्यारे बाबा की याद में हम सब सत्र